Brampton 9058747171।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
एना सोना कर लिया, हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, 3 पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, फिर टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 Bowie Drive West Brampton या कॉल करो 905-450-2828-905-450-2828।
ब्रैम्पटन शहर वालों एक सुनेहा, की तुसी ब्रैम्पटन वार्ड 1, 3, 4, 5 अते 7 विच 4 या घट किराए दी इकाइयां दे मालक हो? जेकर हाँ ता तुहानू रिहायशी किराए दा लाइसेंस प्राप्त करना पवेगा। 2025 दे बाकी समय लई सिटी दे लाइसेंस फीस माफ कर दित्ती है अते नवे आवेदकां नूं मुफ्त स्मोक अलार्म दी पेशकश कर रहा है। यह यकीनी बनाओ कि तुहाडी जायदाद सुरक्षा मापदंडां नूं पूरा करदी है अते सुरक्षित भाईचारा विच योगदान पाउंदी है। ज्यादा जानकारी लई brampton.ca/rrl ते जाओ।
First mortgage, second mortgage, ya phir hove loan. Socho na bas, bilkul bhi hune milao phone.
416-502-8000 स्ट्रेस चाहे लाख का हो या कख का, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000 लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही, बेटी की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879, दैट इज 9057907879।
विलेज टेस्ट पूरे ओंटारियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663। विलेज टेस्ट।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ, 416-792-8792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन 416-792-8792।
Spear and McKay Menswear, fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compare कर सकते हैं आप Harry Rosen, Burberry और Hugo Boss से। 100% Italian wool suits from $249.99, 100% Egyptian cotton shirts from $29.99, 100% Italian wool trousers from $49.99. We have moved to a new location in Heartland Town Center, 775 Britannia Road West, Unit 7B, Mississauga पे हम Sundays को भी open हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कीजिए एट 9056703388 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट spearandmckay.com।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید، ہمارے فہم ظفر آپ کے ساتھ اور ہمارا آپ کا ساتھ انشاءاللہ آج تو اور بھی لمبا رہے گا۔ پروگرام میں آدھا سفر ہم آپ اکٹھے کریں گے اور اس کے بعد پھر آدھا سفر آپ عامر اور شازیہ مل کے کریں گے۔ وی وانٹ ٹو ہیو فن۔ آج بھی میری ایک میٹنگ تھی اینڈ وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو برنگ سم تھنگ گڈ فار آر آڈینس اینڈ فار آر لسنرز۔ اس میں یو ہیو ٹو کال ایٹ دا اسٹیشن اینڈ یو ہیو گاٹ ٹو ون سم پرائزز۔ وی لک فارورڈ فار یو کال۔ اسٹوڈیو کا نمبر آپ نوٹ کر لیجیے، 416-620-1778، 416-620-1778 ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے اینڈ اس میں ہم شامل رہیں گے۔ آج بھی یقیناً گیت نغمے اور باقی چیزیں آپ کے ساتھ چلتے چلتے چلیں گے۔ آج میری پہلی جو سلیکشن ہے وہ آپ ہی لوگوں کے ریفرنس سے اور آپ ہی لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر، فرسٹ سلیکشن از اے بیوٹیفل۔ آج بھی ہماری گاڑی چلے گی اور گاڑی شروع ہوگی بھی تھوڑی دیر کے بعد اور پھر آگے چلے گی۔ آئیے صاحب، پروگرام میں ہم اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بائی دا وے، 770 AM آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کی اپنی آواز ہے، وائس آف کمیونٹی ہم اس کو کہتے ہیں۔ مارننگ آور سے آپ پروگرامس کو سننا شروع کرتے ہیں، بہترین پروگرامز ہیں۔ کمیونٹی کی انفارمیشن آپ لیتے ہیں، میسیجز، نیوز، انفارمیشن اینڈ چٹ چیٹ، یہ پروگرام کا عنوان ہمارا ہے۔ اٹ از وائس آف کمیونٹی، آپ کی آواز، میری آواز، ہم سب کی آواز ہے۔ یقیناً مارننگ آور سے پروگرام کو سنتے ہوئے رات تک پروگرام سنتے چل جاتے ہیں، اس کے بعد یہ پروگرامز ریپیٹ ہوتے ہیں اور بس یوں ہی صبح شام ہوتے ہیں، عمر کے دن تمام ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اب سے تقریباً تھوڑی دیر کے بعد، پانچ سات منٹ کے بعد جناب امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آف کورس وی ول کور کینیڈا کے الیکشن کو کور کریں گے۔ گڈ لک ٹو ایوری بڈی، اور مارک کارنی آر نیو پرائم منسٹر۔ ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ، مطلب اتنی آسان راستہ نہیں ہوگا، اٹ ول بی اے ڈیٹل۔ دس از ناٹ اونلی فار کینیڈا بٹ اراؤنڈ دا ورلڈ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یو نو دا پیتھ وے از ناٹ ویری سمپل اینڈ کلین، اٹ از بمپی پیتھ وے فار نیکسٹ سم ٹائم۔ یقیناً جب سے کووڈ آیا تھا تب سے ہم بہت یاد کرتے تھے، اسپینش فلو کو ہم بہت ذکر کرتے تھے جب سے کووڈ آیا تھا۔ بہت بار ہم نے آپ کو گریٹ ڈپریشن کے بارے میں بھی دکھایا، یعنی یہ وہ ٹائم تھا جب لوگوں نے اپنی پراپرٹیز، اپنے شیئرز، اپنی ہر چیز کو اونے پونے بیچا تھا۔ بہرحال اسٹاک مارکیٹس کی جو پرابلمٹک سچویشن گئی اس کے بارے میں بھی بات کرتے چلے جائیں گے۔ امریکہ کا کہا جاتا ہے کہ فرسٹ کوارٹر واز لٹل ڈیفیکلٹ ان امریکہ، مگر ظاہر ہے وہ ریپبلکنز جو اس وقت ساتھ ہیں گورنمنٹ کے، جیسے کہ یو نو اٹس اے لٹل بمپی روڈ بٹ آف کورس دے ول میک امریکہ گریٹ اگین۔ یوکرین کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے دیٹ از اے فنامنل ڈیل، یعنی یوکرین کی جو قیمتی دھاتیں ہیں جن کی ہمارے کو ضرورت ہے کل کلام کو کنڈکٹ۔ مگر مارکیٹ میں جو ایک چیز ہے، یقیناً میں، آپ جن کے پاس جو کچھ بھی ہو، وی لک فارورڈ کہ ایک پرائز کا کمپیرزن ضرور دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر رہنے والے جو ہیں یہاں کے لحاظ سے پرائسز پے کریں گے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیپل وڈ، دا اسمارٹ شاپرز وڈ لائک ٹو پے دا سیم، بائی سیم تھنگ ایٹ دا لوور پرائز۔ اینڈ میرا خیال ہے کہ جو کہ اس مارکیٹ کو ہرٹ ضرور کرے گا۔ تبھی تو آپ دیکھیے گا یہاں پر بہت ساری ہماری ریموٹ سروسز، ایون بینکس کے بیچ میں آپ کے آئی ٹی کے لوگ دنیا کے ان ممالک سے راتوں میں ان کی سروسز ظاہر کی ہیں۔ ایون اٹ از ڈے ان کینیڈا ویئر ایز اٹ از نائٹ ان پاکستان، پاکستان انڈیا سے آئی ٹی کے بے شمار لوگوں کو ہائر کیا گیا بیکاز دے چارج مچ مچ لیسر ود دا वेरी गुड कस्टमर सर्विस एंड ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर के लिए इट्स अ रीजनेबल प्राइस फॉर देम एज वेल. तो दे हायर रिमोटली पीपल. ज़ाहिर है यहां जब रहते हैं तो यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है, जिसकी वजह से चीज की कॉस्ट एट द एंड ऑफ द डे हर चीज की कॉस्ट जो है वो फिर एंड यूजर पे जाती है. वेयर एज लेट्स सी एनीवेज आज के प्रोग्राम में दो तीन चीजों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं. अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान जैसा मैंने आपसे कहा कि जो प्रेशियस मेटल्स अर्थ मेटल्स के बारे में बात हुई है, अल्टीमेटली ये डील साइन हो गई है. रशिया के बारे में कहा जाता है कि रशिया के ऊपर कुछ और सैंक्शंस लग जानी चाहिए, क्योंकि आप इमेजिन कीजिएगा कि ये धातें नायाब धातें जिसमें वो जिन्होंने चिप्स में इस्तेमाल होना है, जिन्होंने न्यूक्स में इस्तेमाल होना है और बहुत सारी. इसके अलावा मुआहदे के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि अमरीका यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड में फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से यूक्रेन को दी जाने वाली जो माली जो जंगी और साजो सामान की मदद को तस्लीम किया गया है. और मुआहदे के जो अहम नुकात हैं इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के साथ, बिकॉज ही एक्चुअली गॉट व्हाट ही वांटेड टू गेट फ्रॉम यूक्रेन इन रिटर्न, तो कहते हैं कि लबो लहजा वही इस्तेमाल किया गया जो डोनाल्ड ट्रंप का इस्तेमाल है. मादियाती जखायर के मुआहदे की तफसीलात बताते हुए वजीर खजाना ने अपने बयान में कहा है कि इस मुआहदे में यूक्रेन में तरक्की सासों को खोलने में मदद मिलेगी. और रूस को पैगाम है कि ट्रंप इंतजामिया एक ऐसे अमल के लिए पुरअज़म है जिसका जो महवर है आजाद, खुद मुख्तार और खुशहाल यूक्रेन है. अमेरिकन्स को भी खुश कर दिया, अपने कांग्रेसमैन को भी खुश कर दिया. एंड ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट द टैक्टिक ऑफ अ बिजनेसमैन व्हिच इज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बिकॉज दे वॉन्टेड टू हैव ऑल दीज मेटल्स एट नो कॉस्ट एट ऑल. ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज. तो बहरहाल ये इन्होंने आज एक प्रपोज किया कि नया फंड हमारे मुल्क में आलमी सरमायाकारी को रागब करेगा और इसमें तमाम प्रेशियस मेटल्स का जिक्र किया गया जो कि अमेरिका के पास होगी. जाहिर है चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, इनमें ये प्रेशियस मेटल्स मौजूद हैं. और दीज आर रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स. पीरियोडिक टेबल देखें ना तो मेटल्स, अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, ये तमाम की तमाम मौजूद हैं. नायाब जेर जमीन मादियां जिन्हें रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है 17 मिलती जुलती कीमियाई खसूसियात वाली मादियां है. टेक्नोलॉजी में वसी पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जाता है. आप चाहे, और आने वाला दिन तो है ही टेक्नोलॉजी के, चाहे आप G5 G7 सुना है, चाहे ना तो मूविंग टूवर्ड्स G10. ये मादियां स्मार्टफोन, कंप्यूटर, तिबी सामान और कई दीगर अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं. इनमें स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथियम, लिथियम है, पोटाशियम है और न्यूडियम है, प्रोमिथियम है, स्मारियम है, प्रोमियूरेनियम है, गाडोलियम है. ये दीज आर हैवी, ऑल हैवी मेटल्स, अर्थ मेटल्स जिनको कहा जाता है. पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे वाली जगह पे आती हैं. मोस्ट ऑफ दीज आर रेडियाई एज वेल. और ये जैसे मिसाल के तौर पे थ्यूरियम और यूरेनियम जैसी तापकार अनासर के साथ मौजूद होता है और इनको अलग करने में बहुत से जहरीले अज्जा का इस्तेमाल भी करना पड़ता है. अब यूक्रेन में इनमें से बहुत सारी मादियात मौजूद है. अमेरिका की बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी फतह है यूक्रेन से. अल्टीम आपको याद होगा जिस दिन ये मौजूद थे जनाब ज़ेलेंस्की साहब ओवल ऑफिस में मौजूद थे, जिस दिन दे हैड लिटिल आर्ग्यूमेंट दैट डे. उस दिन भी हो जाना था मगर उस आर्ग्यूमेंट के बाद दिस भी डील जो है ये थोड़ी सी ताखीर में चली गई थी. बट अल्टीमेटली अमेरिका गॉट व्हाट अमेरिका वांटेड. आइए साहब, यहां से मैं आपको एक नगमे की तरफ भी लेके जाना है आज के प्रोग्राम में. स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया जिनके तवस्सुल से ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन स्पॉन्सर्स को जरूर ताबन दिया कीजिए. ये आप ही का ताबन है जिसकी वजह से आप वी डू नॉट एडवर्टाइज एनी फॉल्स फेक इन्फॉर्मेशन. हम अपने स्पॉन्सर्स की बेहतरीन सर्विसेज आप तक पहुंचाते हैं एंड वी मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. आइए एक कौमी नगमे की तरफ इस वक्त लिए चलती हूँ. ये कौमी नगमा ऑफकोर्स पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट नगमों में से है. कुछ भी नहीं, फिल्म का एक गीत है और अहमद रुश्दी की आवाज में है. इट्स अ फेमस नगमा, तो मैं नहीं कहूंगी, इट्स अ फेमस सॉन्ग, उस जमाने में एक फिल्म के लिए ये रिकॉर्ड किया गया था। बंदर रोड से किमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। आप इस गीत को एंजॉय कीजिएगा, विल डेफिनेटली कम बैक। स्टूडियो का नंबर 416-620-1777।
मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर, बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बसों की आज भी हर काल, सवारी की फिर क्या है काल, खुदा देता है रोटी दाल, जरा चल घोड़े सरपट चाल। हुई मेरी गाड़ी ओवरलोड, जियो मेरी काली बंदर रोड, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। आया रेडियो पाकिस्तान है तो या खबरों की दुकान, ये रेडियो पाकिस्तान कराची में जी के देश अलावा शास्त्रीय फिलहाल सुल्हर बैंड पर रात सुनाती है, आपने सुनिए पहले अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में। ये आया रेडियो पाकिस्तान है गोया खबरों की दुकान, उसके गुम्बद को पहचान कहीं मस्जिद का हो न गुमान, ये होता है दरसे कुरान कभी दूषितगी का ऐलान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। यहाँ होते हैं गुंडू खान, यहाँ दरबारी और कल्याण, यहीं से कोई तमंचा जान सुनाएगी तो गजल की तान, मगर हम कूढ़ों के ये कान करें लहसुन की क्या पहचान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये आई लक्ष्मी बिल्डिंग कभी की सबसे बड़ी बिल्डिंग, ये आई लक्ष्मी बिल्डिंग कभी की सबसे बड़ी बिल्डिंग, जो लालू खेत से भी देखो नजर आती थी यही बिल्डिंग, जिनका इसमें एक दफ्तर वो अब रखते हैं कई बिल्डिंग, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। हुआ मेरा घोड़ा कम रफ्तार के आया गोल्डन बाजार, रस्ते की है यहाँ भरमार के पैदल चलना भी दुश्वार, रामों का ये बड़ा जंक्शन हर एक जानिब है चीखो पुकार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बम्बे बाजार फलों का होता है व्यापार, सजे हैं से अंगूर अनार मौसम्बी माल से रसदार, सफेदो सुर्ख तो दुकानदार मगर गाहक लागर बीमार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। जिलो हम पहुंच गए टावर है जिसके बाजू खारा कर, जिलो हम पहुंच गए टावर है जिसके बाजू खारा कर, बसों का है ये एक कंडक्टर खड़े हैं बहुत से कंडक्टर, ट्रैफिक का ये वंदे रूप यहीं से खाता है चक्कर, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। चलो अब उतरो बाबूजी तुम्हारी मंजिला पहुँची, चलो अब उतरो बाबूजी तुम्हारी मंजिला पहुँची, यही है कराची की गोदी जिसे कहते हैं कि माड़ी, बनौड़े यहाँ से जाना हो तो ले जाए जिसमें कश्ती, बाबू हो जाना फुटपाथ पर।
जी साहब, बंदर रोड से की माड़ी हमारी चली रे घोड़ा गाड़ी, हमारी तो गाड़ी चला करती है, हमारी मेरी नहीं चला करती, हमारी गाड़ी तो मेरी गाड़ी चला करती होती है, उसकी वजह ये है कि आप सारे के सारे हमारी गाड़ी में बैठे हैं, वी आर ऑल टुगेदर। स्टूडियो का नंबर 416-620-1778। वी विल डेफिनेटली टेक यू टू اویئر ٹو پاکستان جہاں سے جناب ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ سیکورٹی سے جناب امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یسٹرڈے واز دیر واز اے بیوٹیفل 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 پروگرام اینڈ دیٹ واز بائی دی کاؤنسلیٹ آف پاکستان جناب باجوہ صاحب ہمارے کاؤنسل جنرل وہاں پہ موجود تھے. کاؤنسل جنرل سے متعلق ایک انفارمیشن آپ کو دینا چاہتی ہوں. پاکستان کاؤنسلیٹ نے اپنی تمام کی تمام جو ویب سائٹ ہے اس کو ری ویمپ کیا ہے, دوبارہ سے اس ویب سائٹ کو مکمل کیا ہے, جس میں این ادر گڈ فیچر ایڈڈ کہ اگر آپ pakmission.ca پہ تشریف لے کے جاتے ہیں جو کہ ہماری کاؤنسلیٹ پہ لے جائے گا, آپ کو اپنی تمام کی تمام اپوائنٹمنٹس کو بک کرنا پڑتا ہے. اٹس ویری اسٹرینج, یسٹرڈے آئی کیم ٹو نو کہ بہت سے لوگ بائی ایئر ٹریول کر کے یہاں پہ آتے ہیں, بیکاز آف کورس وقت کے ساتھ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ہماری کمیونٹی پاکستان سے آنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, بٹ انفارچونیٹلی سروسز وہیں کی وہیں ہیں. تو بہت سے لوگ جب آتے ہیں بعض اوقات ان کو یہاں پہ اوور نائٹ اسٹے بھی کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اٹس بیٹر کہ آپ pakmission.ca پہ آئیے گا, اپنی اپوائنٹمنٹ بنائیے, اس کے بعد پھر آپ اپنی سروسز لیجیے گا. بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہماری ٹیلی فون کالز نہیں ملتی. وقت کے ساتھ کمیونٹی کے بڑھنے کے ساتھ ود ان آر لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے جو ہماری پاکستان کاؤنسلیٹ ہے انہوں نے ہماری ویب سائٹ پہ pakmission.ca پہ اگر آپ جائیں تو اگر آپ کا ٹیلی فون, ڈونٹ بادر کالنگ ٹیلی فون, یو ول ویسٹ یور ٹائم بیکاز دیر آر سو مینی کالز دیٹ اٹ از ناٹ ایزی ٹو ایڈریس آل دا کالز فرام ون کاؤنسلیٹ. تو انہوں نے میسجنگ سسٹم بھی رکھا ہے, یعنی یو کین بیک اینڈ فورتھ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں جو بھی وہاں پہ موجود ہے صبح سے لے کے شام تک. دیر از آلویز سمبڈی ان دا آفس کہ آپ ٹیکسٹ کے تھرو اپنی pakmission.ca سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. یو کین بک یور اپوائنٹمنٹ اینڈ میک یور اپوائنٹمنٹس اینڈ گو ٹو دا کاؤنسلیٹ اکارڈنگلی. کل بھی ایک بڑا پیارا پروگرام تھا جس میں پاکستان کے بزنس مین تمام کے تمام کیپیٹل بینکٹ ہال پہ جمع ہوئے تھے. اٹ واز اے ویری نائس پروگرام. تو بہرحال پاکستان pakmission.ca کی ویب سائٹ پہ جائیں اگر آپ کو وقت سے آپ دیکھیے گا. کینیڈا میں بھی دیر واز اے ٹائم جب ہم آئے تھے 30-35 سال پہلے, دا تھنگز ور ٹوٹلی ڈفرنٹ, آبادی کم تھی. اور جب آبادی بڑھی اور خاص طور پہ پچھلے 2-3 سال میں جو آبادی جس حساب سے بڑھی, دیر از اے کیوس ایوری ویئر. تو آپ پھر پاکستان میں کاؤنسلیٹ کے اوپر بھی پریشر اسی حساب سے آیا, تو انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی جو سروسز ہیں ان کو اڈاپٹ کیا. ایک آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنا چاہتی ہوں. دس کمنگ فرائیڈے کو بہت سے لوگ, اینڈ آف کورس دیر آر ویری مینی پیپل ہیئر, دے کین افورڈ, آئی ہیو ون آف اے بیوٹیفل ہوم. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ پہ مختلف طرح کی آبادی ہیں, اٹس این اینکلیو, ایک جگہ ہے جہاں پہ صرف بہت بڑے بڑے مینشنز ہیں. اٹس بیوٹیفل ایریا. اچھا مزے کی بات ہے وہاں ایک بلڈر جو ہے اس وقت اپنے گھر بک کرا رہا ہے. دے ہیو ویری فیو ہومز لیفٹ. آئی جا کے دیکھیے, اسٹیٹ ہومز جن کو ہم کہتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. دس از ٹو بی ایگزیکٹ از ایئرپورٹ اینڈ ایئرپورٹ اینڈ کنٹری سائڈ از دی مین جو انٹرسیکشن ہے. تو بٹوین ایئرپورٹ اینڈ گوروے کے درمیان دس از اے پلیس جہاں پہ ایک بلڈر جو ہے وہ اپنے نئے گھر بک بھی کر رہا ہے. بٹ دا ون وچ آئی ایم سیلنگ از یہ گھر برل وڈ, بی یو آر ایل برل وڈ کے اوپر یہ گھر ہے. اٹس اراؤنڈ 7400 اسکوئر فٹ کا ہے. ابو گراؤنڈ جو ہے 5400 اسکوئر فٹ, ابو 5100 ابو گراؤنڈ ہے. اس کی جو بیسمنٹ ہے اس کی تمام ونڈوز ابو گراؤنڈ ہے, وچ از اراؤنڈ 2400. اٹس گورجیس. اچھا ایک اور بات, جب ہم بلڈر سے گھر بک کراتے ہیں تو بلڈر جو ہیں اپلائنسز آپ کو اسٹینڈرڈ اپلائنسز دیتے ہیں, پینٹ اسٹینڈرڈ پینٹ ہوا کرتا ہے, کیبنٹس آف کورس آپ کو اپ گریڈ لینا پڑتا ہے. بٹ نو, اس بلڈر اس اونر نے جب یہ گھر لیا تو دے کسٹم ڈیزائن, انہوں نے بلڈر کی تمام جو بلڈر نے ان کو سامان پرووائڈ کیا, دے ٹک آؤٹ ایوری تھنگ, آل بیوٹیفل جو کیبنٹری ہے آل کسٹم میڈ, اسٹیٹ آف دا آرٹ ہوم ہے. اس میں تمام کی تمام کیبنٹری, چاہے آپ بات کر لیں کچن کی بات کر لیں, چاہے بیسمنٹ کے کچن کی بات کر لیں, گولڈ کا کمبینیشن آپ کو ملتا. اٹس اے بیوٹیفل گورجیس ہوم. ऑल टुगेदर इज 7400 स्क्वायर फुट का ये घर है। अच्छा, बेसमेंट की साइड एंट्रेंस है, बिल्कुल आपने सही सुना, साइड एंट्रेंस है, इट्स नॉट अ लीगल बेसमेंट दो। अच्छा, इन्होंने जो फ्रंट पे और बैक यार्ड के ऊपर जो स्टोन वर्क कराया है दैट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क है। बल्कि बैक यार्ड पे तो उन्होंने जो आबशार भी बनाई है उसमें भी नियाग्रा फॉल्स का रंग देने की कोशिश की है। इस घर का जो देर इज नो कार्पेट इन दिस होम, नॉट इवन अ सिंगल कार्पेट इन दिस होम। जो इसकी स्टेयर्स हैं स्पाइरल स्टेयर्स हैं, ब्यूटिफुल, सींग इज बिलीविंग। अच्छा, नॉट नेसेसरीली कि वेन वी गो इन द मार्केट वी बाय एवरीथिंग। आई रिक्वेस्ट इफ यू वॉन्ट टू सी दिस होम, बाय द वे सैटरडे संडे इसका ओपन हाउस है, ओपन हाउस ऑन दिस सैटरडे एंड संडे, 2 से लेकर 5 के दरमियान ये ओपन हाउस होगा, प्लीज डू कम। मजे की बात यह है कि ये बड़ा घर और स्टेट प्रॉपर्टी छोटे घरों में नहीं है। वंस आई से स्टेट प्रॉपर्टी, दिस मीन ये एक कॉर्नर है जिसके ऊपर जितने घर हैं, दीज आर ऑल टुगेदर 92 होम्स हैं, दीज आर स्टेट प्रॉपर्टीज। जो जाहिर है दीज आर इट्स अ टोटल डिफरेंट कम्युनिटी। ब्रैम्पटन में ये है, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गिव मी अ कॉल। जब आप बिल्डर से बुक कराएंगे से अगर आप, अच्छा मजे की बात है, बिल्डर ने सेम एरिए में घर इससे 2 लाख ज्यादा का बेचा, जिसमें जाहिर है कैबिनेटरी बिल्डर की है, फ्लोर उसने अपने लिहाज से, इस घर के जो फ्लोर लगे तमाम टाइल्ड हैं, हार्डवुड फ्लोर है, कैबिनेट्स उसने तमाम की तमाम बिल्डर्स की निकाल के अपग्रेड किए हैं, तमाम की तमाम अप्लायंसेज जो हैं वो किचन एड के अप्लायंसेज हैं इस घर में। इट्स अ ब्यूटिफुल होम, सीइंग इज बिलीविंग इफ यू आर लुकिंग फॉर इट। हैज 4 bedrooms एंड 6 washrooms, 2 bedrooms बेसमेंट पे हैं, ऑल टूगेदर 6 bedrooms 6 washroom का ये घर है, 6 bedrooms and 6 washrooms का घर। एंड बेडरूम की अगर मैं बात करती हूँ तो जो मास्टर बेड है यू कैन फील लाइक इट्स अ काइंड ऑफ एन अपार्टमेंट, अ ह्यूज बेडरूम, अ ह्यूज हिज कैबिन क्लोजेट, अ ह्यूज, यानी द हाफ होम इज गिवन टू दी मास्टर बेडरूम, और जिसमें एक्सरसाइज रूम भी साथ है, जिसमें बालकनी को भी जाता है, जिसमें यानी आई कैंट एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई रिक्वेस्ट प्लीज, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, प्लीज डू कम टू सी दिस प्रॉपर्टी दिस सैटरडे। इट्स ओपन हाउस इज 2 से लेकर 5 के दरमियान इसका ओपन हाउस होगा। मेरे साथ जनाब इम्तियाज गुल साहब इस वक्त मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का। इट्स वेरी लेट इन पाकिस्तान, बट मैं एहसान मंद हूँ जनाब इम्तियाज गुल साहब की कि आप मेरे साथ तशरीफ लाए। एक्चुअली सामिन, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इफ यू ओन अ बिजनेस गिव अस अ चांस। 770 AM पे वी हैव आर स्पॉन्सर्स जिनके तवस्सुत से ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एंड ऑफकोर्स इफ यू ओन अ बिजनेस, आई प्रोमिस we cover our sponsors in the best possible fashion. But the only thing what we request is ki jo commitment aap kijiyega wo deliver zarur kijiyega. Imtiaz Gul sahab is the director of research and securities in Pakistan. He does visit to very many countries. Expo year hai, he knows, and this is a person not only director of research and security, he was part and parcel to CNN के साथ भी पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। तो दिस मीन उस जर्नलिज्म के तमाम जो एथिक्स हैं एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करते हुए। इम्तियाज गुल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू साजो आवाज।
जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी, मेरा भी सलाम, आप खैरियत से हैं?
अल्लाह का बहुत शुक्र। सर मैं सबसे पहले तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले माफी की ख्वास्तकार हूं कि मैंने आज आपको लेट का कहा, बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड अपॉइंटमेंट टुडे, सो आई हैड टू बी देयर। जाहिर है इट वॉज इन द मॉर्निंग एंड देन हमारे जो जिनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी उन्होंने इसको आगे किया एंड ऑफकोर्स आई हैड टू गो विद अलॉन्ग विद। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कंसिडर किया। दिस इज नॉट दैट आई वॉज इंजॉइंग माई लाइफ, बट येस आई वॉज इन अ प्रेजेंटेशन दैट टाइम, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी।
मजदूरों का दिन है, मजदूरी कर रहे हैं,
मजदूरी कर रहे हैं। मैं अपने लिसनर्स को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो हमारा चैनल ई आवाज, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, आवाज मीन वॉइस, ई आवाज बिकॉज माई रिलेशनशिप विद यू इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट कैन बी रेडियो, इट कैन बी टेलीविजन, और इट कैन बी आर यूट्यूब चैनल, और इट कैन बी आर टिकटॉक। तो प्लीज बी पार्ट एंड पार्सल, और इफ यू हैव एनी कंसर्न्स और रिकमेंडेशन टू टेक्स्ट मी।
اینڈ وہ کہتے ہیں نا محبت فاتح عالم. امتیاز گل صاحب اس وقت کیونکہ میرے ساتھ ہیں, ہم نے ایک سبجیکٹ پاکستان کا صرف ایک چیز کور کرنی ہے, بٹ ایٹ دا مومنٹ آف کورس پوری دنیا کے بدلتے حالات, آپ امریکہ کی بات کر لیں, دنیا کی یورپ کی بات لیں, آپ دیکھیے گا ریسیشن کی اگر بات کرتے ہیں تو یورپ میں تو اس سے پہلے آ گیا تھا جب بریگزٹ کی بات ہوئی تھی, جرمنی کے لیے بہت ٹف ہے, فرانس کے لیے بہت ٹف ہے. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا مڈل ایسٹ, مڈل ایسٹ کی جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے صرف غزہ کا, شام کا, لبنان کا, مصر کا خیال آتا ہے, مگر اگر میں نارتھ امریکہ کی طرف بھی آ جاؤں تو امریکہ اور کینیڈا کے لیے بھی صورتحال اتنی مطلب خوشکن نہیں ہے. کینیڈا کے الیکشن ہوئے, سب سے پہلے تو ان ممالک میں ایک ایتھکس ہوا کرتی ہیں اور ان ایتھکس کے مطابق ان ممالک کی الیکشنز میں کوئی بھی ملک انٹرویو نہیں کر سکتا. آئی لیو کینیڈا, ان کینیڈا ایون امریکہ بھی میڈلنگ نہیں کر سکتا, یعنی الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا. امریکہ میں اگر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو دیٹ از اگینسٹ دا لا کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ ہر ملک آزاد ہے, مختار ہے, سوورن کنٹریز ہے. مگر دس الیکشن میں ایک چیز نے بہت ہانٹ کیا کینیڈا کو, نہ صرف کینیڈا کو بلکہ پوری دنیا میں. آئی تھنک آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن ان گرین لینڈ میں کیا صورتحال ہے, مگر کینیڈا میں جب یہ کہا گیا کہ جسٹن ٹروڈو صاحب سے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بات کی کہ کینیڈا ول بی دا 50th سے ناٹ ول بی از دی 50th اسٹیٹ 51st اسٹیٹ آف, تو آپ لوگوں کے ٹیکسز ختم ہو جائیں گے, جس کے نتیجے میں تمام کے تمام کینیڈینز متحد ہوئے. میں پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے, یہ جو آپ ہر وقت کہتے ہیں نا ان کی امبیسی کو نکال دو, ان کے امبیسیڈر کو نکال دو, اٹ ڈزنٹ, ڈپلومیسی ڈزنٹ ورک دس وے. دا کینیڈینز پلیڈ دیئر رول. ایک اور چیز کہی جاتی ہے ہمارے یہاں, جھنڈا جلا دو, ڈونٹ برن. آپ کسی کا جھنڈا جلائیں گے وہ آپ کو جھنڈا جلائے گا, مگر ہمارے کینیڈینز دے گاٹ ٹوگیدر. امریکہ نے بہت سفر کیا ہے کہ بے شمار لوگ جو کینیڈا سے امریکہ کو وزٹ کیا کرتے تھے دے اسٹاپ وزٹنگ. امریکن ایئر لائنس کو اپنی ڈائریکشنز چینج کرنی پڑی, بزنسز ان کیوس, بزنسز ان نیگیٹو, وہاں کے ہوٹلز کو, سیاحت کو بہت اس کا اثر پڑا. ایک اور چیز, سو کینیڈینز دے گاٹ ٹوگیدر ٹو یو نو ٹو شو دیئر سوورنٹی, اپنی استحکام, اپنی وطن سے محبت کے لیے تمام کینیڈینز نے رول پلے کیا. انہوں نے اپنی ریزرویشنز کینسل کروا دی, انہوں نے فلائٹس کینسل کروا دی. ایک اور چیز, بہت سارے کینیڈینز نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن کے بعد, یسٹرڈے ہی واز ان دا اوول آفس, بیکاز آپ کو پتا ہی ہے کہ ہی واز ابراڈ, ہمارے جو پوپ ہیں پوپ فرانسس ان کا فیورل تھا, تو ونس ہی کیم بیک یسٹرڈے ان دا اوول آفس, انہوں نے کہا میں نے ڈائریکٹ مداخلت کی, کینیڈینز نے مجھے نفرت کی, مگر کیونکہ میں نے کینیڈا کو 51 اسٹیٹ کا بننے کا کہا, میں کوٹ ان کوٹس میں, بے شک میرا خیال ہے امتیاز گل صاحب بھی کریں گے, آئی ڈونٹ نو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوپنلی برملا اظہار کر دیا کہ کینیڈا کے الیکشن میں ڈائریکٹلی کہاں کہ ایک پارٹی 25 پوائنٹ آگے تھی. دس واز مائی ورڈز اور مائی اسٹیٹمنٹس وچ totally change the direction of a Canadian election. But ہمیں واضح اکثریت کی ضرورت تھی, بٹ جو لبرل پارٹی ہے اس وقت رولنگ پارٹی, ان کے پچھلے 9 سال کی حکومت رہی, کینیڈا کی اگر تاریخ کو اٹھایا جائے 9-10 سال کے بعد ڈیفینیٹلی گورنمنٹ چینج ہوا کرتی ہے, بٹ دس ٹائم پیپل گاٹ ٹوگیدر, لبرل گاٹ الیکٹڈ دا فورتھ ٹائم, بٹ انفارچونیٹلی دین وی ایکسپیکٹڈ کہ جو بھی پارٹی آئی وہ اکثریت میں آئے. لبرل نے 169 سیٹس لی ہیں, ویئر ایز کنزرویٹو نے 144 لی ہیں. ہماری ایک بلیک بلاک کی بکوا پارٹی ہے جنہوں نے 22 لی ہے. ایک پارٹی جس کا خون خرابہ ہوا, دا پارٹی وچ بلیڈز, از این ڈی پی پارٹی. کہاں کہ ان کی سیٹیں ایک زمانے میں 123-124 بھی تھیں, دے کیم ٹو, اٹ واز آفیشیل پارٹی تھی لاسٹ ٹائم انہوں نے لبرلز کے ساتھ کام کیا, دے کیم ٹو جسٹ 7, اور پارٹی اپنا جو اسٹیٹس ہے آفیشیل اسٹیٹس وہ لوز کر دیا. ان کے جو لیڈر ہیں جگمیت سنگھ, انہیں ریزائن کرنا پڑا. اب ناؤ دا بال از ان دا کورٹ آف جناب امتیاز گل صاحب, بیکاز آف کورس واٹ میڈ کینیڈینز کم ٹوگیدر, مارک کارنی is a very fine man, well educated, one of the person who belongs to elite class. He does have bahut bade bade inke businesses hain. He's a rich man, and but he's an a man jisne banks ko, Bank of England ke governor rahe hain, Bank of Canada ke governor rahe hain, Brookfield ke saath aap munsalik rahe hain, you know, ab now he is prime minister of Canada. Ji janab Imtiaz Malik sahab, afsa Imtiaz Gul sahab, my apologies. Ji sir, ab aap ke kya tasavvur karte hain ke tareekh ko jhutlate hue Canadians ne ek party ko ek bar phir mandate diya, but it's not like bilkul ba ikhtiyar hai, but still 169 is a good number. So what would you predict?
Dekhiye ji, predict to kuch nahi karte, shukriya, aapne puri tafseel se bata bhi diya ke surat-e-haal partiyon ki kya hai Canadian parliament mein. मैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो पार्टी जिसको 125-26 सीटें मिली हैं, यानी अब अपोजिशन में बैठेगी, और उसके सरबरा ने आके पब्लिक में कहा कि जी हम इलेक्शन हार गए हैं लेकिन कनाडा इलेक्शन जीत गया है, इसलिए कि हमारे मुल्क को खतरा पैदा हो गया था अपने पड़ोसी मुल्क के सदर के बयान से, और हम जब कनाडा की बात आएगी हम सब इकट्ठे होंगे. तो इसमें जो बात बड़ी उभर के सामने आई वो ये था कि जब मुल्क की बात आई तो सब लोग इकट्ठे हुए. दूसरी बात ये नहीं था कि अपोजिशन लीडर आया और उसने कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई है और अगर मगर उसने कोई नहीं किया, बल्कि हार मान के बराए रास्त जो अक्सरियती पार्टी थी उसका साथ देने की का वादा किया अब कनाडा की खातिर. तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी एक सबक है, चाहे वो हुकूमत में हुकूमत से बाहर हैं. यही हम देखते हैं यूरोप में भी, जर्मनी फ्रांस में जब इलेक्शन होते हैं कोई आधे परसेंट वोट से भी जीत जाता है तो फिर आके वो अपने मुखालिफ को, सियासी मुखालिफ को वो मुबारकबाद जरूर देते हैं और मुल्क के लिए काम इकट्ठे करने का वादा वेद भी करते हैं. तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ बहुत कुछ पाकिस्तान के लोग इससे सीख सकते हैं और काश के हमारे मुल्क में इतनी तकसीम न होती, क्योंकि यहाँ पे पावर, दो पावर सेंटर्स हैं और उसकी वजह से लोगों की आरा, लोगों की राय या लोगों की जो लॉयल्टी है, वफादारी है, वो भी किसी हद तक बची हुई है. मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था आज भारतीय किसी साहब ने, कश्मीर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त डाली कि जो पहलगाम का 22 अप्रैल को दहशतगर्दी का वाकया हुआ है उसकी अदालती तहकीकात करवाई जाए. उस मौके पे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, मुझे नाम उनका भी भूल रहा है, उन्होंने ये कह के वो दरख्वास्त वापस कर दी कि ये एक बड़ा नाजुक मौका है पूरी कौम की तारीख में, इस वक्त कशीदगी बढ़ी हुई है हमारी पहलगाम के वाकये के बाद से, और अगर हमने अब इस वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया तो इससे हमारे फौजी जो आर्म फोर्सेज हैं वो डीमोरलाइज हो सकती हैं, यानी उनकी हौसला शिकनी हो सकती है, लिहाजा इस मौके पे हम इस किस्म की कोई पिटिशन एंटरटेन नहीं कर सकते. तो मैं वो सोच रहा था कि देखिए कितनी उन्होंने अथॉरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और उसके ऊपर कोई एतराज भी नहीं हुआ. तो मैं पाकिस्तान का सोच रहा था कि क्या यहां की सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई काम कर सकती थी. एक काम उसने जरूर किया है कि जो भी अपोजिशन पार्टी है पीटीआई, उसको वो हक उसने नहीं दिया जिसकी ये पार्टी हकदार थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत बड़ी अक्सरियत नाला है अपने अदालती निजाम से, उस पर वो एतमाद नहीं है जो एतमाद भारत में किया जाता है सुप्रीम कोर्ट पे, जहां पे आप आम आदमी भी जाते हैं तो उसको انصاف ملتا ہے، وہ ہر معاملے کو انصاف اور قومیت کے قوم پرستی کے تناظر میں ضرور وہ تولتے ہیں۔ تو وہ میرے لیے ایک لحاظ مجھے افسوس بھی ہوا کہ کاش کہ ہماری سپریم کورٹ بھی ایسی متنازع نہ ہوتی اور تمام لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے یہاں صورتحال مختلف ہے۔
سر آپ کا بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے بنایا، مطلب آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے اور یقیناً جس جگہ پہ آپ جس پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں، دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم نے کوئی انسان چاہے فیکٹس پہ بھی بات کر رہا ہو وہ مور لگا دیا جاتا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ مسلم لیگ کا ہے، تحریک انصاف کا ہے، منہ سے نکلنے والے الفاظ بہت آسان ہیں۔ مگر ابھی آپ نے جب انڈین سپریم کورٹ کا جب ذکر کیا ہے کہ دے ریفیوزڈ، اینڈ لیٹ می ٹیل یو اگین، آپ میرے پاکستانی بھائیوں کو بے شک اس بات کا برا لگے، انڈینز آر نیشنلسٹ پیپل، they are nationalist, they work for the country, for the sake of country. I don't see very many of their politicians, corruption sari duniya mein hai, I have not seen most of their politicians living abroad and leaving India, ruling in India. Unfortunately this is our fiber, musalmanon ka moral fiber ye hai. Ab Haseena Wajid bhi bhagi hain Bangladesh se to kaha India ja ke baith gayi hain, jab waqt aayega to wahi ja ke hukumat karengi, yahi ہم لوگوں میں رہے۔ اٹس اے ہارڈ فیکٹ، وی مسٹ ریئلائز اٹ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ میں کون ہوں۔ اگر سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کیس کو لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ایکسپلینیشن یہ دی ہے کہ انڈین جو پولیس آفیسرز ہیں ان کا مورال، آرمی آفیسرز جو ان کا مورال ڈاؤن ہوگا، ایک لحاظ سے سر یہ انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کیا ہے، کیونکہ دس از 21st century، دنیا میں ایک ملک لیڈ کرتا ہے۔ آج آپ امریکہ کی بات کر لیں، آپ امریکہ کے جورسٹ کی بات کر لیں، ججز کی بات کر لیں، دے آر آل اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ، اینڈ ہمارے اونٹیریو کی پروونس کے جناب ڈگ فورڈ صاحب کل اسی بات پہ خائف تھے کہ پولیٹیشین کو تو الیکٹ کرتا ہے اس کی کینڈیسی جو ہے، وہ جو اس کے کانسٹیچوئنٹس ہیں وہ اس کو الیکٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ججز نامزد کر دیے جاتے ہیں ان کو کیا پتا کانسٹیچوئنس کی کیا پرابلم ہے اور ہمیں کیا قانون تبدیل کرنا ہے۔ تو بٹ انفارچونیٹلی اگر عدالت نے اس وقت اس کو ریجیکٹ کیا ہے تو عدالت نے کام کیا، انہوں نے ایک لحاظ سے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، انہوں نے بی جے پی کو بھی سپورٹ کیا ہے۔ اندر تھنگ جس کو میں زیادہ آپ سے سننا چاہتی ہوں، انڈیا میں مختلف واقعات ہوئے، اینڈ آئی ایم ویری سیڈ، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے ہمارا یہاں کینیڈا کا ریسنٹلی واقعہ جو ہوا ہے جس میں ایک ٹرک چڑھا دیا گیا لوگوں پہ، جس میں امریکہ میں واقعات ہوتے ہیں جس میں جو داعش رول پلے کرتی ہے، لشکر طیبہ رول پلے کرتی ہے، بٹ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ انڈیا میں جتنے واقعات ہوئے، دیر واز اے ون ٹائم واقعہ ہوا تو بل کلنٹن واز دیئر، دیر واز ون ٹائم جب واقعہ ہوا تو آپ کے اوباما صاحب وہاں تھے، اس دفعہ واقعہ ہوا تو ہمارے جے ڈی وینس وہاں پہ تھے۔ آن ٹاپ آف دیٹ انڈیا اتنی بڑی ملک ہے کہ وہاں مختلف اسٹیٹس ہیں، کہیں نہ کہیں الیکشن ہوتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے بی جے پی فتح حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کرتی ہے۔ ریسنٹلی محکمہ اوقاف کے لحاظ سے آپ اوقاف کی زمینوں کی بات کر لیں، مسجدوں مندروں کی بات کر لیں، تو یعنی ڈویژن کے لیے یہ پوائنٹ رکھا جاتا ہے اور پہلگام کو بھی اس کے لیے الیکشن میں جیتنے کے لیے ایک سیڑھی کے طور پر استعمال ضرور کیا جائے گا۔ If I'm wrong, آپ کی یقیناً اس پہ ریسرچ ہوگی، پلیز ڈو ٹاک اباؤٹ۔
نہیں، اس میں کہا یہی جا رہا ہے کہ بہار میں الیکشن ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس مرتبہ جو سینسس ہوگا، رائے شماری ہوگی، اس میں ذات بھی لکھی جائے گی۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھارت میں ذات پات
اور چھوٹی ذاتیں
بہت وہاں پہ گہری تقسیم ہے، اور وہاں پہ جو ایک ذات پات کا نظام جو ہے نا، کہ سب سے بہترین براہمن ہے، اس کے نیچے پھر دوسرے کھتری وغیرہ آتے ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں کئی لوگوں نے کہا، اس طرح اشارہ کیا کہ چونکہ الیکشن ہو رہا ہے لہٰذا بھارتی خفیہ ایجنسی نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے جس طرح ماضی میں کیا جاتا رہا۔ अभी हमें नहीं मालूम कि वाकईतन ये फॉल्स फ्लैग है या नहीं है। हमें अफसोस इस बात पे है कि अभी वाकया हुआ, 10-15 मिनट के बाद FIR दर्ज हो गई और तमाम तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया। बिल्कुल इस अंदाज में कि गोया पाकिस्तान की हुकूमत ने या पाकिस्तान के किसी इदारे ने इस वाकये को बराए रास्त कंट्रोल किया, करवाया और वहां पे मासूम जो सयाह थे उनको कत्ल कर दिया। बड़े मतलब काबिल मजम्मत बात थी, पूरा काबिल मजम्मत एक्शन है कि वहां पे लोग सयाहत के लिए गए उनको इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन जो भारतीय खुफिया एजेंसी और मीडिया के जरिए जो मुसलसल खबरें लीक प्लांट की गई, लीक की गई, उसका बिलवास्ता मतलब ये बनता था कि हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी इदारे ने ये काम करवाया है। लिहाजा अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और मैं तो उनका कुछ टीवी फॉलो भी कर रहा था तो बार बार वो लोग यही पूछते हैं कि अच्छा पाकिस्तान के खिलाफ हमला होगा कि नहीं, और अगर पाकिस्तान पे हमला हो गया तो क्या पाकिस्तान किस नौयत का जवाब देगा। मैं हैरान हूं इस बात पे कि वो ये बार बार, करण थापर साहब बड़े मशहूर एंकर हैं वहां के और वो हमारे सबका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से इंटरव्यू में बार बार ये पूछ रहे थे कि आप ये बताएं कि अगर भारत ने हमला किया तो किस कदर सख्त जवाब आएगा पाकिस्तान की तरफ से। यानी वो ये नहीं सोचते कि भाई आप बगैर सबूत के पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपने पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन मशीनरी जो है पाकिस्तान के खिलाफ लगा दी है और साथ में ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हमने हमला करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, हो सकता है आज रात कर दें, कल रात कर दें। लेकिन सवाल ये कि किस बुनियाद पे। और दूसरा ये जो चीखना चिल्लाना है उसमें एक बहुत ही ना एक बच्चों की तरह ये है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हमला करना है, लेकिन ये वो नहीं सोचते कि जिस पे हमला होगा, यानी पाकिस्तान पे अगर वो हमला करते हैं तो यहां पे भी फौज ने कुछ चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई हैं। 7-8 अरब डॉलर सालाना इस फौज पे खर्च होता है, बाकायदा उन्होंने स्टेट ऑफ प्रिपेयरनेस में है। यानी अगर भारतीय हुकूमत इस वक्त परेशान है पब्लिक प्रेशर की वजह से और उस प्रेशर में वो पाकिस्तान पे अगर हमला कर देते हैं, किसी भी किस्म का हमला हो, जाहिर है पाकिस्तान भी तो उसका जवाब देगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में भी फिर तवक्कु तो यही होगी, अगर भारत ने कोई स्ट्राइक कर दी तो पाकिस्तान के अवाम की फिर तवक्कु होगी कि जिस फौज के लिए हमारे इतने वसाइल मुख्तस हैं वो भी अब अपना काम दिखाए। और ये जो टिट फॉर टैट है ये यकीनन होगा, इसके बगैर मैं नहीं समझता कि ये मौजूदा एपिसोड खत्म होगा। अगरचे अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोन पे बातचीत की है हमारे वजीर आजम के साथ और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के साथ, और उसमें दोनों को एक लिहाज से उन्होंने मशवरा दिया है। भारत से कहा है कि आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, पाकिस्तान से कहा है कि आप इस हमले की मजम्मत करें, क्योंकि पाकिस्तान से अभी तक बाजाबता तौर पर पहलगाम के वाकये की मजम्मत नहीं हुई है। और साथ में पाकिस्तान से ये भी कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आप भारत का साथ दें। तो एक लिहाज से दोनों मुल्कों को ये पैगाम दिया गया है कि आप सियासी टेम्परेचर को बढ़ाने की बजाय कम करने की कोशिश करें, और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप आपस में बातचीत करें।
बहुत शुक्रिया सर। मेरा यहां से आपसे जो सवाल आ रहा है कि मैं एक वाक्य का तذکرہ करती हूं, और मजे की बात यह है कि मुझे उसकी डिटेल उस बंदे से मिली। आपको याद होगा कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान गई हुई थी, लिबर्टी में ये वाक्य हुआ था, गोलियां चली थी। कहते हैं कि जब अखबारों ने, और मैं जाती तौर पे इस शख्स से, द इंचार्ज ऑफ द इवेंट से मेरी बात हुई, तो वो कहते हैं कि आप बताइए कि वो जो गोल चक्कर है वहां से लेके फोर्ट्रेस स्टेडियम इज वेरी क्लोज, मिनट डेढ़ दो मिनट का वक्फा है। अखबारों में खबर आई थी कि इट टुक 10 मिनट्स। वो कहते हैं यस, ये वक्त लंबा लगा था मगर 10 मिनट का था, डेढ़ मिनट का एक्चुअली टाइम था। ये वाकया होता है कि लिबर्टी के इस जगह पे जब इनकी बस प्लेयर्स की थी तो ये शख्स भी वहां पर मौजूद थे। जो शख्स एक आता है नीले लिबास में मलबूस था, बस में से सामने वाली गाड़ी में से जो इनके सामने आती है उतरता है, फायर करता है और यके बाद दीगरे बेशुमार फायर करता है, जिसके बाद ये लोग वहां से फ्ली करते हैं और राउंड अबाउट से कजाफी स्टेडियम तक पहुंचते हैं। कहते हैं कि ये सिर्फ 1.5 मिनट का वक्फा था और इसी 1.5 मिनट में टाइम्स ऑफ इंडिया से इन ही वॉज नॉट नोन पर्सन, तो कहते हैं द फर्स्ट कॉल जो उनको उन्होंने रिसीव की दैट वाज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, जबकि ये वाकया अभी एयर पे भी नहीं गया, कहीं पे भी नहीं गया। उन्होंने कहा कि क्या इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप ये बताइएगा कि यहां जख्मी कितने और कितने लोगों की। तो कहते हैं कि हम गोलियां अभी चल रही थी और हम वहां से स्टेडियम तक ही पहुंचे थे, जो लोग इस जगह को देखा हुआ है। तो कहते हैं मैंने उनसे कहा कि हु इज दिस, तो उसने कहा कि दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि नंबर भी उसका मतलब जो इंडिया का नंबर आ रहा था। तो कहते हैं क्योंकि उस वक्त मैं जिस स्ट्रेस में से गुजर रहा था या हम बस के अंदर जो लोग थे जिसमें, तो मेरे अल्लाह ने शायद मदद की कि मेरा फोन बंद हो गया, मैंने बंद कर दिया फोन, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद जाहिर है हम फोर्ट्रेस स्टेडियम पे पहुंचते हैं तो जो कुछ भी हुआ 3-4 बार उनकी फोन आई, मैं फोन ले नहीं सका। आप सोचिएगा गोली चलती है और गोली चलने के 1.5 मिनट में, जब ये वाकया कहीं भी नहीं गया, टाइम्स ऑफ इंडिया को इसकी खबर थी। अब मजे की बात है, बाद की इन्वेस्टिगेशन, हमारे अपने इदारे भी सोए हुए नहीं है, हमारे इदारे भी इंटरनल काम करते हैं। आपकी जाती दुश्मनियां हो सकती हैं पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर, मगर इदारे अपने, वो कहते हैं जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उसी रात से ही तो हमारी अपनी एजेंसी के लोग मेरे तरफ आए, सारा कुछ पूछा। कहते क्योंकि मैं खुद उस स्ट्रेस में से ट्रामा में से गुजर रहा था तो मैं इस कॉल को मिस करता गया, तो वो बार बार पूछते थे एनी अदर थिंग। तो कहते मैं ना जिच हो गया, मैंने कहा कि आई एम अंडर ट्रॉमा, इन दिस ट्रॉमा आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू इंक्वायर। तो उसने कहा कि जस्ट थिंक अबाउट इट, आई एम नॉट इंक्वायरिंग एनीथिंग, आई टोल्ड यू एवरीथिंग, बट स्टिल थिंक अबाउट समथिंग एल्स। तो कहते वहां मुझे क्लिक किया कि ओह ये, तो कहते मैंने उनको बताया कि यस आई गॉट अ कॉल इन 1.5 मिनट के अंदर अंदर, अभी हम फोर्ट्रेस स्टेडियम पे पहुंचे भी नहीं थे तो टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे कॉल आई थी। कहते हैं कि उन्होंने कहा यस दिस इज व्हाट वी वांटेड टू आस्क। तो उन्होंने कहा कि इफ यू वांटेड टू आस्क दिस यू न्यू दैट, डिड आई टॉक टू देम। उसने कहा बिल्कुल, हमें पता है कि तुमने बात नहीं की, हमें ये भी पता है कि तुम्हें बाद में, बट हमारी रिपोर्ट हमने मुकम्मल। अब ये सारा वाकया सुनाने का मकसद जस्ट बाय चांस कि आज रा के जो एक्स ऑफिसर हैं उन्होंने इसके बारे में बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो रा के सरबराह हैं जाहिर है जनाब अमरजीत सिंह, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि इंडियन सिक्योरिटीज की कमजोरी जरूर है कि हाउ कम दे डिड नॉट नो कि ये हो रहा है। और मजे की बात यह है कि इतने मजमे में उन लोगों ने फायर किया, लोगों को मारा, नोबडी कुड अरेस्ट हिम, जंगलों के बीच में गायब हो गए। इसमें उन्होंने ये बात भी की और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जंग नहीं होगी, देर इज अ राइट वे टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट बिकॉज दीज बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज, इसके बारे में क्या फरमाएंगे। आज बड़ा कमाल का उनका इंटरव्यू है साबिक सरबराह अमरजीत सिंह साहब का।
वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जंग गालिबन नहीं होगी और उसकी एक वजह तो है कि चीन, रूस, अमरीका इन सब मुल्कों ने पाकिस्तान और इंडिया से कहा है कि आप हाथ हौला रखें, टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करें और इस खत्ते में मजीद गैर यकीनी और इनसिक्योरिटी का एहसास न फैलाएं। दूसरी बात यह है जैसे आपने कहा कि दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, एटमी हथियार मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान की हालत बहुत भी खराब अगर हो जाती है खुदा ना खास्ता तो उसको फिर ऐसे नहीं दबाया जा सकता जैसे मालदीव्स को या श्रीलंका को या नेपाल को शायद भारत दबा सकता है, क्योंकि बहरहाल इसके पास फिर ऐसे पटाखे हैं कि उनका खतरा तो बाहर मौजूद रहेगा। दुआ करनी चाहिए कभी वो इस्तेमाल ना हो जो टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों अफवाज एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और चौथी बात यह है कि भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि इस वक्त चूंकि उसका मुकाबला चीन के साथ है कि भारत के अंदर जो तरक्याती अमल जारी है उनकी इकतसादी सूरत हाल इतनी अच्छी है तो अगर हफ्ते दो हफ्ते के लिए भी वो कोई महदूद किस्म की जंग छेड़ते हैं वो पाकिस्तान के साथ, तो उसका बराह रास्त असर भारत की इकोनॉमी पे, भारत की मईशत पे होगा और वो तमाम जो प्रोसेस है वो खासी हद तक स्लो डाउन कर जाएगा। तो चूंकि वो ग्रोथ ओरिएंटेड एक मुल्क है, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी सरमाकारी में और उनकी पैदावारी अमल में एक दिन का भी रखना आए। लिहाजा खुली जंग नहीं होगी, महदूद पैमाने पे एक दूसरे के खिलाफ टेट फॉर टैट हो सकता है। अलबत्ता जो खदशा है वो ये है कि चूंकि नरेंद्र मोदी ने अभी उनका एक स्पेशल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसकी तशकील नौ की है और उसके सरबराह को जो उसका चेयरमैन है वो भी रॉ के एक साबका सरबराह है, तो आप अंदाजा लगाइए कि एडवाइजरी सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का सरबराह भी एक्स रॉ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल भी रॉ का साबका सरबराह है, फिर जो सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसमें ज्यादातर जो है फौजी भरे हुए हैं। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मैंने अपनी फौज को खुला आजादी दे दी है कि आपने जो करना है वक्त का हदफ का तायुन आप अपनी मर्जी से कर लें, यानी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी फौज के हवाले कर दी, ये सिग्नल दिया कि मैं जंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, अलबत्ता आप अगर समझते हैं तो आप जरूर मेरी तरफ से आपको खुली छुट्टी है। दूसरी तरफ हमने ये सुना है बिलवास्ता तरीकों से, अखबारात में भी आता रहा है कि भारत इस वक्त चूंकि गर्मी, शदीद गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, उसको एक तरफ चीन के साथ लद्दाख में गोलवान के महाज पे एक महाज का या कन्फ्रंटेशन का सामना है, अमली तौर पे वो एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अभी भी एक लिहाज से चल रहा है, दूसरी तरफ अगर कश्मीर में भी पाकिस्तान की सरहद के साथ भी उसका दूसरा महाज खुल जाता है, तो फिर कई जो एक्सपर्ट्स हैं भारत के भी उनका ये मानना है कि अब तो एक गर्मी बहुत है, अभी तो हफ्ते में बहुत गर्मी शुरू हो जाएगी, ट्रूप मोबिलाइजेशन के लिए आपको कम अज कम दो हफ्ते चाहिए, उसके बाद फिर आप अपनी एयरफोर्स को भी कुछ सपोर्ट फराहम कर सकते हैं, एयरफोर्स इनको सपोर्ट फराहम कर सकती है। तो लुबाब यह है कि बहुत बड़े पैमाने पे जंग का मेरा ख्याल है कोई खतरा नहीं है, सिर्फ अदले बदले के एक दो ठाठू हो जाएगी। अलबत्ता भारत ने जिस तरह प्रॉक्सी टेररिज्म में एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो बलोचिस्तान के लिए या बलोच आजादी पसंद ग्रुप हैं उनके लिए भारत में बड़ी हमदर्दी पाई जाती है, इसी तरह टीटीपी के भी बताए जाते हैं, कोई थाने बाने शायद उधर ही से मिलते हैं, हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट में अब मजीद इजाफा हो जाए जिसके नतीजे में पाकिस्तान में तो पहले ही दहशतगर्दी की वजह से काफी गैर यकीनी सूरत हाल है, अदम तहफ़ का एहसास तो है, तो अगर थोड़ा बहुत उसमें 10-15-20% उसने ज्यादा सरमाकारी कर ली टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने, तो आने वाले हफ्तों और महीनों में पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं काफी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।
बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने ये सर आज मैं डिटेल देख रही थी कि बहुत सारे लोग जब बाज़ औक़ात ये कहते हैं, जब इससे पहले एक वाक्य हुआ था मेरे सामने ये प्रोग्राम, आई डोंट वांट टू प्ले दिस प्रोग्राम, मियां साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स को प्रिपेयर करने में अपना रोल प्ले करता है। 26/11 बाय द फॉर्मर पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ, और ज़ाहिर है हिंदुस्तान ने अपने मीडिया के ऊपर इस रिपोर्ट को चलाया भी था, ये तकरीबन 6 साल पुरानी बात है। इसके अलावा आज की अगर हम बात करते हैं तो आज आपके, एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज के हमारे इदारे, ये 6 साल पहले का एक और बयानिया, 7 साल पहले का एक और बयानिया भी मैं आपके शेयर कर दूं कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जिन्होंने बड़ी कीमत चुकाई जब उन पे यही फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का मामला चला था, उन्हीं ने ही ये भी कहा था कि हमारी वो लोग जो मुल्क की सिक्योरिटी की बात, ये मैं नहीं कह रही, यूट्यूब के ऊपर ये पड़ा हुआ है, بالکل اٹ از رائٹ دیئر ایٹ دا یوٹیوب, میں پلے نہیں کرنا چاہتی. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ملک کی سیکورٹی کی بات کرتے ہیں ان کو اکاؤنٹبل کرنا چاہیے. بڑا کلیئر میسج دیا. آج آپ کے خواجہ آصف صاحب, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہی ڈزنٹ ہیو اینی ادر منسٹری بٹ ہی ہولڈز دس منسٹری آف وزیر دفاع, خواجہ آصف صاحب وہ ایک فورن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یس ہم نے فیسلیٹیٹ کیا تھا ملیٹنٹس کو تیار کرنے میں. میں نے آج تک انڈیا کا کوئی ایک منسٹر ایسا نہیں دیکھا. اف آپ کو یا آپ جیسے باقی جرنلسٹ جو بات کرتے ہیں ان کو تو بلاک کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں نہ جا کے بات کریں, خواجہ آصف صاحب ڈیڈ ہی گیٹ اینی نوٹیفیکیشن فار واٹ ہی سیڈ اباؤٹ دی پاکستانز انوالومنٹ ٹو یو نو ان ملیٹنٹس کو پیدا کرنے میں؟ بڑا
ابھی تک تو کوئی ایسا